अच्छा भागवतम के अंदर सारे हर प्रकार के वर्णन हैं, जैसे हम मोहिनी मूर्ति का अध्याय पढ़ते हैं तो स्त्रियों की सुंदरता का इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, या नेचर का डिस्क्रिप्शन है, फिर आगे लड़ाई होगी तो लड़ाई का डिस्क्रिप्शन है, तो भागवतम इज सो डिस्क्रिप्टिव। सुखदेव गोस्वामी कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं, जो एज इट इज है वो बिल्कुल बता रहे हैं उसके अंदर, बिना कुछ ज्यादा इमोशंस अटैच किए, बिना कुछ किए जो है सुखदेव गोस्वामी। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, सुंदर इस प्रकार से है कि मैं दो तीन श्लोक इसमें से पढ़ता हूँ, 11.5 तो नहीं पढ़ूंगा। कि वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी, उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे, फाटक अर्थात दरवाजा उत्कृष्ट संगमरमर का था, ये सभी विभिन्न जल मार्ग जुड़े थे, पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह नगरी आंगनों, चौमार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी, चौराहे मोती से बने थे और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। अब ये विमान का मतलब या तो एरोप्लेन हो सकता है, या फिर साउथ इंडिया के अंदर विमान को जो घरों के ऊपर मतलब मंदिरों में भी रहता है उसको भी विमान बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या गोपुरम गोपुरम गोपुरम, या जिसको हम शिखर या गुंबद जैसे बोलते हैं, मुसलमान में बोलते हैं गुंबद, वर्ड तो मुसलमानों का है, लेकिन जो भी है तो अभी इसका क्या एग्जैक्ट मतलब है इंग्लिश में देख सकते हैं व्हाट इज बीइंग ट्रांसलेटेड। मैथड लिखा है विमान नहीं, जो शब्द वर्ड मीनिंग है उसमें जो वायुयान लिखा है, तो एनीवे 10 करोड़ विमान। उसके बाद उस पुरी में नित्य सुंदर था, तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी, उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। और उसके बाद नगरी में मोतियों से सजे चंदनों की छाया पड़ रही थी, महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी, वह नगरी सदा मोरों कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गुंजित रहती थी। दिल्ली तो कौओं की ध्वनि से रहती है, उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे जो कानों को अच्छे लगने वाला था, मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली स्त्रियों सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। श्लोक संख्या 21। वह नगरी मृदंग शंख दमामे आनक दुंदुबी अर्थात दमामे मतलब आनक दुंदुबी वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित थी। कभी अगर सुखदेव गोस्वामी दिल्ली का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो बोलेंगे जहां खाली ट्रैफिक जाम से भरा हुआ था, जहां खाली ट्रैफिक के हॉकिंग हॉर्न्स की आवाज थी, लेकिन ये स्वर्ग का वर्णन है। इसको पढ़ के निश्चित रूप से किसी में रुचि जागृत हो सकती है कि वहां जाना चाहिए थोड़ा। वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था, गंधर्व गण गाते रहते थे, इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता या छटा को जीत रही थी। श्लोक संख्या 22। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उग्र चालाक मिथ्या अभिमानी कामी या लालची थे वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहां रहने वाले इन सभी निवास इन दोषों से रहित थे। तो निश्चित रूप से ऐसा पढ़ के किसी की भी इच्छा होगी कि वहां जाया जाए, लेकिन आने वाले जो श्लोक हैं वो उस इच्छा को ध्वस्त करने के लिए सक्षम है। देखो इतनी बढ़िया जगह भी हो, इतना बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम भी हो, इतना ऑपुलेंस भी क्यों ना हो, लेकिन जो है भय आतंक और डर वहां पे भी मौजूद रहता है। ऐसा ऐश्वर्य भी टेम्पररी है, इसीलिए आसक्त मत होइए। श्लोक संख्या 23। असंख्य सैनिकों के सेनानायक बलि महाराज ने इंद्र के उस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उसके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और इस प्रकार बोले। तो कितना भी बेस्ट सिक्योरिटी बेस्ट ऑपुलेंट प्लेस भी क्यों ना हो, बट भौतिक जगत के अंदर है वहां हमेशा तकलीफ रहेगी। दुखालय मसाशमुक्तम आ ब्रह्मा भूनाथ लोक पुनरावर्ति अर्जुन महोपैत्य तो कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस ब्रह्मांड के अंदर उच्चतम लोक से निम्न तक लोक तक सब जगह जो है जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैवी क्लेश आदि भौतिक क्लेश आदि आत्मिक क्लेश किसी न किसी मात्रा में किसी न किसी प्रकार से हमेशा लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उनसे पूछा, हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है, और उसने ऐसी आश्चर्य शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। हाईली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उसके डिफेंस के अंदर कोई कमी नहीं थी। अब ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से दशों दशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह यह संवर्तक नामक प्रलयकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है, वह इतना उत्साही कैसे हो गया है। आज का श्लोक, श्लोक संख्या 28। श्री गुरु उवाच, जानामि मघवं शत्रुः उन्नते अस्य कारणम्। शिष्याय उपभृतं तेजो भृगुवेदं नवादिभिः। धन्यवाद एवं तात्पर्य अभय जनानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुवाच, बृहस्पति ने कहा, जानामि जानता हूं मघवन हे इंद्र, शत्रु हो शत्रु की उन्नते है उन्नति का अस्य उसका कारणम कारण, शिष्याय शिष्य को उपभृतम प्रदत्त तेज शक्ति भृगुभिः भृगुवंशियों द्वारा, ब्रह्मवादिभिः सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों द्वारा। अनुवाद, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूं जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सामान्यतया बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतएव नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या आरना करिया माने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियों ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशता हरे कृष्ण। एक बार श्री प्रभुपाद अपने वर्ल्ड टूर पे एक बार अमेरिका गए और यूएस के अंदर जितने मंदिर थे वहां के लगभग जितने प्रेसिडेंट्स थे और अन्य जो लीडर्स थे वो सब प्रभुपाद जी के कसम लेने के लिए वहां पे आए थे। और जब सारे प्रेसिडेंट्स आए थे वहां पे तो सब भव्य प्रभुपाद जी सामने बैठे और जब आते थे भक्त जानवर प्रणाम करते थे, प्रभुपाद जी को माला अर्पण करते थे और कुछ ना कुछ गिफ्ट ऑफर करते थे और साथ में सब प्रभुपाद को अपने बुक फंड के लिए या अन्यथा जो है कुछ ना कुछ लक्ष्मी भेंट करते थे अपने मंदिर की ओर से, कुछ चेक या जो भी कैश इत्यादि। तो और प्रभुपाद सबके अमाउंट को देखते थे, देख रहे थे और सबसे मिल रहे थे, सबको रिकॉग्नाइज करते थे प्रभुपाद। और तो सब भक्त सोचते थे कि किसका हाइएस्ट है डोनेशन जो प्रभुपाद को दे रहे हैं। तो और प्रभुपाद सबका अनाउंस भी कर रहे थे, तो हर कोई सोचता था इस मंदिर से ये प्रेजेंट, ये डोनेशन इस प्रकार से, कि तमाल कृष्ण महाराज अपने बुक सर्वेंट और सर्वेंट में लिख रहे हैं। तो सबको था कि कौन सबसे हाइएस्ट होगा, ऐसे भी भावना किसी किसी के मन में थी इत्यादि। और फाइनली लास्ट में एक भक्त आए और एक और एनवलप लेके आए जो भेजा था उस समय शायद गुरु कृपा स्वामी थे या गुरु प्रभु ऐसे नहीं गए, तो उन्होंने भेजा था। प्रभुपाद ने एनवलप को खोला, एनवलप उसमें से निकाला और बोला गुरु कृपा इज द हाईएस्ट, कि गुरु कृपा जो प्रभु या स्वामी जो भी उस समय थे, क्योंकि इसे गुरु कृपा लिखा है तो वी डोंट नो उस टाइम पे जो भी इनका स्टेटस था, बट एनीवे इनका सबसे कलेक्शन हाईएस्ट। तो सब भक्त खुश भी हुए और सोचे और स्पर्धा की भावना भी थोड़ा बहुत आया कि ठीक है हम भी और करेंगे कुछ सेवा। लेकिन फिर प्रभु अब सब सोच रहे थे कि हम तो सारे तो अब, लेकिन प्रभुपाद ने अभी तक तो एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव सेवा का मूड था या एक एंथुसियाज्म का मूड था। प्रभुपाद पुट हिज हेड डाउन और फिर प्रभुपाद ने सबके फिर बाद में सबके आंख में देखा और बोले कि देखो जो भी सफलता मुझे प्राप्त हो रही है इसका एक ही कारण है सिर्फ, वो है कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा पालन किया, श्रील भक्ति ठाकुर प्रसन्नता के लिए कार्य किया, इसीलिए आज जो भी सफलता आप देख पा रहे हो वो सिर्फ वो एकमात्र कारण है। अब जितने भी डिसाइपल जितना भी प्रेसिडेंट्स थे वहां पे और जो अपना डोनेशन लेके आए थे, प्रभुपाद भक्त तमाम कृष्ण लिख रहे हैं प्रभुपाद हम्बल्ड ऑल ऑफ अस बाय हिज ह्यूमिलिटी, कि प्रभुपाद अपनी नम्रता के कारण, हम सब सोच रहे थे मैंने इतना कलेक्शन किया है, हमारे मंदिर ने ये किया है और हम भूल रहे थे कि प्रभुपाद ने क्या किया है। लेकिन प्रभुपाद कभी नहीं, प्रभुपाद ने इतना कुछ किया लेकिन प्रभुपाद को हमेशा याद था ये क्या है, मैंने नहीं किया है, ये सब श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की कृपा है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी एक ऐसे ऑथर हैं जो अपनी किताबें लिखते नहीं अपनी किताबों को जीते हैं, है ना, और अपना जीवन उन्होंने इन्हीं शास्त्रों के आधार पर जिया है। और ये तात्पर्य बता रहा है कि बलि महाराज के पास सामान्यतः ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि भृगुवंशी ब्राह्मण उनसे प्रसन्न थे बहुत अधिक, इसीलिए उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया था उनसे और ये सारी शक्तियां प्रदान की थी। जब ऐसी शक्तियां प्रदान की तो आने वाले श्लोकों में वर्णन आएगा, बृहस्पति कहेंगे कि आप लोग बेटर है अभी लड़ाई मत करो, हारना वैसे ही है, आप स्वर्ग छोड़ के चले जाओ। और बलि महाराज बिना किसी रुकावट के सभी अश्व लोग स्वर्ग पे आकर कब्जा कर लेते हैं, वहां पे 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लंबे समय तक जो है बलि महाराज वहां पर रूल करेंगे। और बृहस्पति उन्हें कहते हैं कि अभी आप स्वर्ग छोड़ो और भगवान की शरण में जाओ, फिर भगवान वामदेव का जो है अवतार लेंगे। तो ये कथा इस प्रकार से आएगी अगले 5-6 अध्याय के अंदर, 4-5 अध्याय के लिए। ये श्लोक के अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तात्पर्य के अंदर। प्रभुपाद लिख रहे हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अब तो अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। कि बलि महाराज से शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए। तो वास्तविकता में जो ताकत, जो साहस बलि महाराज का है, ये अद्वितीय शक्ति पराक्रम, ये वास्तविकता में उनके गुरु शुक्राचार्य का है। बलि महाराज एक निमित्त मात्र है खाली। और कृष्ण शास्त्रों में, भक्ति के, भगवद गीता के अंदर सब जगह हम देखते हैं कि भगवान स्वयं भी, आचार्य गण भी गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के ऊपर बहुत अधिक बल देते हैं कि गुरु के प्रमाणिक गुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है, इत्यादि इत्यादि। और प्रभुपाद जी भी इतने सारे तात्पर्य में रिपीटेडली लिखते हैं। तो ये क्या सिस्टम बनाया भगवान कृष्ण ने, क्यों हम डायरेक्टली उनका अप्रोच नहीं कर सकते, क्यों हमें गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से जाना है, जाना चाहिए। तो ठीक है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्यों? तो एक भक्त ने अपना रियलाइजेशन इसमें ऐड किया, हमको बताया एक बार, बोले क्यों? क्योंकि हम सब कृष्ण से स्वतंत्र होने के कारण, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण हम सब अलग हुए, अर्थात वी ऑल हैव इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, इसीलिए हम भगवान से स्वतंत्र हो गए। तो अब भगवान चाहते हैं हम वापस आए, हमारा अपना भला भी उसी के अंदर है कि भगवत धाम वापस जाए, लेकिन हमारे अंदर तो वो वायरस है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का वायरस ऑलरेडी था। और अब अगर हम बिना स्कैन हुए, बिना प्यूरिफाई हुए अगर भगवत धाम वापस गए, तो फिर से तो हो सकता है भगवत धाम में भगवान के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर देंगे और भगवान को हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, जय श्री श्री आधार अधिकरण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से हम सबको कवर कर देते हैं, और लेकिन साथ में खुद भी आते हैं, शास्त्र भेजते हैं और विशेषकर प्रामाणिक गुरु और भक्तों को भेजते हैं, और उनके द्वारा सर्वबद्ध जीवात्माओं को जो है ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कि कैसे स्वतंत्रता को त्याग करके जो है भगवान के ऊपर निर्भरता का, भगवान के शरणागति के मार्ग को अनुकूल कर सके। तो ये इतना कॉन्फिडेंशियल टास्क, इतना महत्वपूर्ण टास्क जो है आध्यात्मिक गुरु या जो वैष्णव है वो निभाते हैं, एक बद्ध जीव को शरणागत बनाने का। मैंने रुक्मिणी कृष्ण से दो तीन बार सुना है अलग अलग कि भक्ति का मार्ग है जैसे एक जंगली जानवर को पालतू बनाना। तो एक उपमा है कि किसी शेर को सर्कस में लेके आते हैं तो बहुत अधिक उसको मतलब वोलेटाइल ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि वो काबू में आ सके और सर्कस से कर्तव्य कर सके। तो ऐसे जंगली जानवर को पालतू बनाना, ऐसे ही बद्ध जीवों को जो भगवान से रिबेल होकर ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं और उनको भगवान की प्रेम भक्ति कराना, ये प्रशिक्षण देने के लिए आध्यात्मिक गुरु आते हैं, उनका लक्ष्य है। इसीलिए कृष्ण ने, क्यों नहीं तो कृष्ण की शांति भंग होगी, इसीलिए आध्यात्मिक गुरु वैष्णव गण भी ये जिम्मा उठाते हैं कि ठीक है भगवान की प्रसन्नता, भगवान इंजॉय करते रहे और हम भगवान के जो बिछड़े हुए जीव हैं उनको भगवत नाम जाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। तो इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बिना गुरु के शरणागति हुए, बिना भक्तों के प्रति शरणागत हुए, बिना शास्त्र के शरणागत हुए, बिना हम डायरेक्टली कृष्ण को शरणागत नहीं हो सकते। ये माध्यम है कृष्ण के शरणागत के, शरणागति होने के। तो इसलिए भगवान कृष्ण इतना अधिक बल देते हैं शास्त्रों के अंदर, आदो गुरु पादाश्रय, कि किस प्रकार प्रमाणिक गुरु के शरणों की ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, यदि कोई जीवन के श्रेयस अंतिम सबसे उन्नत लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आचार्य मां बिजानी याद नव मन्यत करिचित, कि आचार्य को मेरे ही समान मानना चाहिए, उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। जगह जगह हम देखेंगे इस प्रकार से, गीता में भगवान स्वयं कहें तद वृद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशते ज्ञान ज्ञान सत्पदर्शन। अध्याय के अंदर आचार्य उपासना स्थैर्य, की आचार्य की उपासना करनी चाहिए, आचार्य की शरणागति लेनी चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को तभी ज्ञान देना शुरू किया जब अर्जुन ने उनका गुरुत्व या अर्जुन ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, उनको गुरु धारण किया। तो भगवान जो है शास्त्रों के अंदर बहुत ज्यादा इसको बल दिया जा रहा है कि प्रमाणिक गुरु के शरण कैसे शरण ग्रहण की जाए। और यहाँ भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त मिल सकती है। और हम रोज सुबह गाते हैं जो प्रभुपाद जी ने या दोनों भजन कोट के, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् मृगति कुतोपि, या हम गाते हैं जहां रह प्रसादे पाई ए भव तरी आ जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहां हुई थे, उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है, मेरी एकमात्र इच्छा है। तो प्रभुपाद जी जब एक बार एक शिष्य सामने थे, पता नहीं एक जगह और दो तीन जगह है, लेकिन एक जगह वर्णन आता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, दीक्षा के समय उन्होंने नियम लिया, व्रत लिया, चार नियम का पालन करेंगे और रोज सुबह गाते हैं गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते जय करिया एक आराधना करिया मने आशा, लेकिन फिर भी रोज जो है गुरु की आज्ञा का तोड़ देते हैं, का उल्लंघन करते हैं। तो बोले ये इतना दोगलापन है। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेस देते थे अपने जीवन के अंदर। प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया कि नई सफलता का राज है कि भक्ति सांत सरस्वती की आज्ञा का मैंने पालन किया, अक्षरशः एज इट इज पालन किया। तो जो है कृष्ण ये शीर्षक के ऊपर, ये विषय के ऊपर बहुत अधिक बल देते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। ये श्लोक तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं कि गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और गुरु के आशीष ऐसे उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब अपना एंडेवर जप करने का, भक्ति करने का, चार नियम पालन करने का, शास्त्र पढ़ने का, सेवा करने का, कितना भी हम प्रयास करें वो अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से जो प्रोग्रेस हो सकती है वो जो है अपने निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होती है। अर्थात क्या है कि अपना जो प्रयास है वो वास्तविकता में गुरु की प्रसन्नता और गुरु के आदेश के लिए होना चाहिए, यानी गुरु का आदेश का पालन करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए हमारा, ताकि वो प्रसन्न हो सके, और वो प्रसन्न होंगे स्वाभाविक रूप से तो कृष्ण की कृपा अनडाउटेडली हमको प्राप्त होगी, आध्यात्मिक जीवन में सफलता निश्चित है 100%। तो इसका मतलब ये नहीं कि निजी एंडेवर करना छोड़ दें, गुरु जब आशीर्वाद देंगे तभी हमको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं, लेकिन हम इस प्रकार से कार्य करें कि स्वतः गुरु के हृदय से आशीष निकले, आशीर्वाद मिले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो एक मैं दो कथा लेने का प्रयास है, दो उदाहरण भागवतम के अंदर से, लेकिन उससे पहले तो प्रभुपाद जी ये जो श्लोक है 4:34 उसके अंदर बड़ा अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं, जिसका व्यक्तिगत उदाहरण हमें श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में देवहूति माता से मिलता है। चाहे वो स्त्री के शरीर में थी लेकिन किस प्रकार से उन्होंने कर्दम मुनि की सेवा की, और दूसरा प्रथम स्कंद के अंदर श्री नारद मुनि का, तो क्या वो प्रिंसिपल है यहाँ लिखा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से, इंक्वायरी एंड सबमिशन के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान, बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो गुरु भी ऐसा नहीं कि आप गुरु जी के पास जाइए, चेक दे दीजिए, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मेरे सर पे हाथ रख दो, पीठ पे हाथ रख दो, ठीक है वो रख देंगे, लेकिन वो प्रसन्नता का मापदंड नहीं है, वो प्रशंसा कर देंगे वो मापदंड नहीं है। जब वो देखते हैं कि गुरु शिष्य के अंदर निश्चित रूप से सबमिसिव इंक्वायरी है, सेविनीत भाव है, सेवा की भावना है, तब वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमको शास्त्र मिल जाएंगे, खासकर चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है महाराज प्रताप रुद्र का, किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय इत्यादि के शरण ग्रहण उन्होंने जब की थी, तो किस प्रकार महाप्रभु बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे कि उनसे नहीं मिलना है, दर्शन नहीं देना है। सभी पार्षद जाते थे, महाप्रभु दर्शन दीजिए, आप राजा से मिलिए नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। तो महाप्रभु बोले कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर अगली बार आपने शिक्षक इसके विषय में चर्चा की तो। सब बोले क्या करें, एक तरफ अगर राजा नहीं होगा तो ये भक्ति के भावना करना भी, भक्ति करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मुसलमान लोग आक्रमण करेंगे। लेकिन फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके इतने अधिक तीव्रता को देख करके मार्ग बताया कि जो रथ यात्रा के दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। एंड देन वी नो द पास्ट टाइम, किस प्रकार महाप्रभु सातों दिशा सातों सर्कल्स के अंदर थे और केवल एक दो लोगों को ही लीला पता थी, उसमें से एक थे महाराज प्रताप रुद्र। डांस करते करते चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र के सामने ही आके गिरे और प्रताप रुद्र महाराज ने कैच किया उन्हें, लेकिन राजा के भेष में थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाय हाय छी छी, दैट्स द वर्ड इज यूजिंग, यू नो, अनटच्ड बाय अ किंग, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मेरे को विषय व्यक्ति का स्पर्श प्राप्त हुआ। तो प्रताप रुद्र डर गए, मैंने अपराध किया क्या। सारों भट्टाचार्य बोले नहीं, महाप्रभु की कृपा देने का यही तरीका है। और इसके बाद में अभी जब बालगंडी पर रथ रुकेगा, जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, तो सारे चैतन्य महाप्रभु के सारे शिष्य के साथ गार्डन के अंदर रेस्ट करने जाएंगे। तब राजा का वेश छोड़ करके वैष्णव वेश धारण करके और जाना महाप्रभु का पाद समाहन करना और गोपी गीत गाना। और महाप्रभु जब अंतरंग अवस्था के अंदर थे और वो जाते हैं गोपी गीत गाते हैं, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्म शापहम, तो ऐसे गाते हुए जब वो महाप्रभु का पाद समाहन कर रहे थे, महाप्रभु तो भगवान सब जानते लेकिन पूछ रहे आप कौन हो, कौन हो, हु आर यू, और उनका आलिंगन करते हैं, बोले भूरिदा जना कि आप वो टॉपमोस्ट मिनिफिशेंट वर्कर जिन्होंने मुझे कृष्ण कथा का ये पान कराया है। और महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और इस प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज को कृपा प्राप्त होती है। लेकिन वो किस कारण, सार्वभौम भट्टाचार्य की ने जब उनको उनके तीव्रता को, उनकी सेवा की भावना को, उनकी विनम्रता को देखा जो है उनके, तो उन्होंने बताया कि ये मार्ग जो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और तभी महाप्रभु कृपा प्राप्त हुई उन्हें। तो ऐसे ही तीसरे स्कंद के अंदर एक विशेष कथा प्राप्त होती है माता देवहूति की और उनके जो पति कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि भी एक विशेष कैरेक्टर है इस प्रसंग के अंदर। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो और ब्रह्मा जी के कहने पर तपस्या करने जाते हैं, 10,000 साल तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्दम मुनि सब जानते हुए भी लेकिन भगवान से बोलते हैं कि मेरी इच्छा है विवाह करने की। भगवान सामने खड़े हैं ना, और कर्दम मुनि शोक करते हैं कि देखो मैं कितना, मेरे अंदर इतने मटेरियल डिजायर्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला है प्रजापति हैं वो, एक प्रजा का तो, और प्रजा से प्रजा उत्पन्न करने का और संतान उत्पत्ति करने से पहले शुद्ध अपना तपस्या करना बहुत आवश्यक है, शुद्धिकरण करना आवश्यक है। तो केवल पिता की आज्ञा पालन करने तपस्या करते हैं और उस आज्ञा के पालन करने में अडिग रहते हैं। भगवान से बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कृपा करके आप पूरा कीजिए। भगवान बोलते हैं कि मैं तो ऑलरेडी जानता था आपकी इच्छा क्या है, आपका मैच मेकिंग मैंने ऑलरेडी फिक्स किया है ना, फर्स्ट मैट्रिमोनियल सर्विसेस जो है भगवान ने फिक्स किया था जो है, और बोला कि 3 दिन बाद परसों के दिन में, मतलब डे आफ्टर टुमारो, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे। और वो इतनी खूबसूरत है कि एक बारी महल में ऊपर खड़ी थी और अपने किसी गेंद से खेल रही थी, तो ऊपर विमान से जाते हुए गंधर्व लोक का वासी, वो विमान तो ऐसे चल रहा था, वो विमान से नीचे गिर गया उनकी खूबसूरती को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, और वो आपके लिए आइडल मैच है। और कर्दम मुनि को कोई ऐसे खूबसूरत युक्ति नहीं चाहिए थी, उन्होंने तो सीधा बोला था कि मुझे अपने गुण के समान, एक गुणों में समान पत्नी चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में मेरे को असिस्ट कर सके। अभी देवहूति स्वयं मनु की पुत्री राजकुमारी महल के अंदर बड़ी हुई और यहाँ ये फकीर कर्दम मुनि जो है जंगल के अंदर रहने वाले हर्मिटेज के अंदर। और स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का जब 2 दिन बाद स्वयंभू मनु आते हैं और उनकी पत्नी, एनीवे दोनों आते हैं अपनी बेटी को लेके, शत्रुपा, तो दोनों आते हैं और कर्दम मुनि से वार्तालाप होती है, अपने कन्यादान करते हैं, स्वयंभू मनु चले जाते हैं। स्वयंभू मनु जाने वाले होते हैं तो कर्दम मुनि क्या, उनके जाने से जब डायलॉग खत्म हो गया, और कर्दम मुनि ऐसे भक्त थे बस डायलॉग खत्म और वो समाधि के अंदर बात खत्म, इमीडिएटली वाज कृष्णा कॉन्शियस। तो उनकी मुस्कान को देख करके ही बिकेम सो अट्रैक्टिव, देवहूति बिकेम वेरी अट्रैक्टेड कर्दम मुनि के स्माइल को देख के। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाते हैं लोगों के लिए। तो अब शादी हो गया दोनों का, राज महल को छोड़ करके देवहूति माता जंगल के अंदर रह रही, कोई ऑपुलेंस नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है। और उसके बाद में पतिदेव भी ऐसे जो समाधि में जाए तो पता नहीं कितना दिन कितना हफ्ता चले जाए, ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे जॉब पर जाएंगे शाम को 6 बजे आ जाएंगे। एक बार समाधि में गए तो उनको भी नहीं पता कितने दिन बाद निकलेंगे बाहर, और देवहूति माता जो है उनकी सेवा करती थी हमेशा। इस प्रकार अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की सेवा करती हैं। तो उस प्रकार से उदाहरण दिया कि पार्वती शिव जी की सेवा करती हैं, शिव जी पार्वती भी इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति की कन्या, और कहां शिव जी घर भी नहीं उनका, कैलाश पर रहते ऐसे ही सांप और सब अलग अलग से जो है, बट फिर भी वो इतनी पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति की सेवा करती हैं। उसके बाद देवहूति माता सेवा करती थी। तो सेवा करते हुए वो बिल्कुल उनके पास समय नहीं था कि ढंग से आहार कर सके, स्नान कर सके, और टाइम नहीं था बालों को श्रृंगार कर सके, अच्छे वस्त्र डाल सके। शी वाज सो बिजी, अभी जंगल में क्या सेवा करती होंगी, सफाई करती होंगी आश्रम की, फल फूल लेके आती होंगी, कंदमूल इकट्ठा करती होंगी, लकड़ी लाती होंगी सब यज्ञ के अंदर, ये सब सेवा करते करते। और कर्दम मुनि एक दिन आँख खोला उन्होंने तो देखा ये किससे शादी किया था, उनको भी आश्चर्य हो गया, ये इतनी मैली कुचली स्त्री जिसने बाल नहीं अपने संवारे कभी, और इतनी दुबली पत्नी हो गई, मैंने तो राजकुमारी का शादी किया था। तो उनको भी एक बार आश्चर्य हो गया, लेकिन ऐसा देख करके कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए। जो है जो कर्दम मुनि ऐसे बताए कि राजकुमारी अत्यंत दुबली हो गई थी, उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है, तो बहुत अपने शरीर की भी उन्होंने देखभाल नहीं की। शी बिकेम सो वीक। तो जब कर्दम मुनि ने देखा तो बोल रहे तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्तिया। तो बोला हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेमपूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय किसको, हर व्यक्ति को अपना शरीर है, लेकिन मेरी सेवा में आपने जो अपने शरीर की भी उपेक्षा की है। तो फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत तपस्या ध्यान और कृष्ण भक्ति करके कई साल तक जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जो भगवान का कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद है वो भय तथा शोक से रहित है, और तुमको इनका कोई अनुभव नहीं है। ये जो मैचलेस गिफ्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस के, लव ऑफ गॉड, इसका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेवा में इतना प्रसन्न हूं मैं तुमको एक प्रदान करूंगा। अब देखो इन्हें देखो, कह रहे हैं किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, किसको, भगवान का आशीर्वाद जो है और लव ऑफ गॉड की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि तू मेरे सेवा में लगी हुई हो। अब इन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं कि जिससे तुम देख सको कि वे कितने सुंदर हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ उसमें। देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती थी, ना कोई तपस्या, ना कोई ध्यान, ना कोई जप इत्यादि, वह तप ध्यान या कृष्ण भावना में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह ना तो देख सकती थी ना अनुभव कर सकती थी। उसे यह समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। देवहूति की सिर्फ एकमात्र क्वालिफिकेशन थी कर्दम मुनि की फेथफुल सेवा, यू नो प्रैक्टिकली अनइंटरप्टेड अनअलॉयड सर्विस जो है देवहूति ने की। इसके कारण क्या परिणाम हुआ, कोई ज्यादा तपस्या ध्यान नहीं किया, सिर्फ कर्दम मुनि की कृपा से जो कर्दम मुनि के पास गिफ्ट था एज इट इज बोला देवहूति को दे दिया कृष्ण प्रेम, सो इजी, यू नो। इसी प्रकार से जो है यदि कोई शिष्य अपने गुरु की इस प्रकार से कोई सेवा करता है तो गुरु के पास जितना भी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है उसके पास तो है कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे, कि आध्यात्मिक गुरु भगवान के महान भक्तों के पास तो कृष्ण स्वयं है, तो क्या वो कृष्ण नहीं दे सकते। बस श्री कुंजी क्या है, दे शुड बी प्लीज्ड, इफ दे आर प्लीज्ड द सर्विस ऑफ अ डिसाइपल यदि वो अपने शिष्य की सेवा से प्रसन्न है, शिष्य के कार्यकलाप से प्रसन्न है, इमीडिएटली ही गेट्स, चाहे वो शिष्य इतना उन्नत ना हो जप ध्यान कृष्ण भक्ति के अंदर, लेकिन गुरु से कृपा से उसे भक्ति का हाईएस्ट जहां रह प्रसाद है भाई एभव तरिया कृष्ण प्राप्ति है, जहां हुए थे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। सिर्फ प्रमाणी गुरु की शरणागति से कृष्णा बिकम्स ऑल ऑफ दैट डिवोटी जो अपने गुरु की उपासना करते। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कर्ता यथा प्रकाशते महात्मनः। प्रभुपाद इसी तात्पर्य के तीसरे श्लोक में लिख रहे हैं, मैं भी उस पर अभी प्रश्न लेने का, लेकिन अगेन इट वॉज वेरीफाइड प्रभुपाद कहने कर्दा मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। शी बिकम सेल्फ रियलाइज्ड सिंपली बाय सर्विंग कर्दा मुनि। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन से प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, ना उनकी बड़ी उम्र थी, ना एजुकेशन था, ना कोई अच्छा कुल था, लेकिन चार महीने भक्ति वेदांति से वो जो आए थे साधु, उनकी सेवा करने का परिणाम प्राप्त हुआ। परिणाम प्राप्त हो गया तो बोल रहे हैं कि वो भक्ति वेदांति तो समदर्शी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा प्राप्त की। क्यों कृपा प्राप्त की, क्यों कृपा की मेरे ऊपर उन्होंने? चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना सुषुषमाणे मुनि अल्प भाषणी। उसे बता रहे हैं दांते अधृत किरण के अनुवर्तनी कि मेरे अंदर कुछ क्वालिफिकेशन थे और भक्ति वेदांति ने, मैं छोटा था लेकिन मेरे पर बहुत कृपा प्रदान की। तो कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रभुपाद जी लिख रहे गुरु गुरु के, इसलिए मैं ये कथा इसलिए लिया कि गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो गॉड्स गुरुज ग्रेस इज ग्रेटर देन डिसिपल्स एंडेवर, या इन अदर वर्ड्स डिसिपल शुड डू एंडेवर टू प्लीज गुरु। शिष्य को जो कार्य करना चाहिए इसीलिए कि मेरे गुरु का आदेश है और गुरु की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो हम 16 माला भी कर रहे हों तो भगवान हमारे 16 माला से प्रसन्न ना हो शायद, लेकिन उसके पीछे ये भावना है कि नहीं, ये मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु को वचन दिया है इसीलिए मुझे पालन करना है एज बेस्ट एज पॉसिबल। यू नो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द बेस्ट सर्विस इज टू चैंट मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स डेली, दैट इज द टॉप मोस्ट सर्विस अमंग ऑल द सर्विसेज गुरु के प्रति। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है। यदि कोई शिष्य उसका जो है उस वचन का जीवन पर्यंत पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कृपा प्राप्त होगी निश्चित रूप से। तो अब कोई क्वेश्चन आ सकता है मन के अंदर, ये तो भगवान ने पूरा डिक्टेटर सिस्टम बना दिया। कोई बोल सकता है कि भाई अगर ये लोग प्रसन्न नहीं हुए तो मेरा कोई हो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, सफलता का, या आई डोंट हैव नो होप। और इन लोगों ने अपनी मोनोपोली, भगवान ने तो गुरु का मोनोपोली बना लिया, समबडी में सीट एज अ मंडेन डिक्टेटरशिप। और बहुत ही जगत में ऐसी धारणा स्वाभाविक भी है क्योंकि हम सबके पास ऐसा बैकग्राउंड है जहां पे कोई अथॉरिटी को फॉलो करना, या हम सब स्वतंत्र, वैसे भगवान स्वतंत्र होने की वजह से यहाँ आए थे तो यहाँ कैसे स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्रों के अंदर ऐसे प्रसंग बार बार आते हैं कि उसका बेनिफिट क्या है। देखिए यू नो उसका बेनिफिट ये है कि हम सोच रहे थे कि हम स्वतंत्र होंगे, लेकिन हुआ क्या, भौतिक जगत में तो आके हम और स्वतंत्र हो गए। इतने सारे लॉज ऑफ नेचर हमारे ऊपर हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सुबह भूख लगती है, सुबह सोना पड़ता है, हमको खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, इतने सारे नियमों से हम बंधे हुए हैं। नींद आती है, हमें काम कमाने जाना पड़ता है और हमें लगता है कि हम आजाद है कि नहीं। तो लेकिन वास्तविक आजादी जब हम भगवान ऐसे आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमें रियल इंडिपेंडेंस प्राप्त होती है। किसी को आगे 15 अगस्त पे लेक्चर लेना हो तो ये श्लोक आप कोट कर सकते हो 1616 पहले स्कंद का 6वां श्लोक, जिसमें नारद मुनि कह रहे हैं वो दासी पुत्र थे लेकिन ये चार महीने वेदांत जी की सेवा की तो क्या हो गया, वो वही जीवन के अंदर वो माता जी का देहांत हो गया तो उनका रिलेशन है भगवान की बड़ी कृपा है, नॉर्थ की ओर चल गए हिमालय की ओर, और फिर भगवान के चरणों पर ध्यान लगाया, जब ध्यान लगा तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया तो नहीं 31 तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि भगवान दर्शन प्राप्त हुआ, फिर भगवान अदृश्य हो गए तो मैंने दोबारा ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने फिर आवाज दिया कि ये जन्म में नहीं देख पाओगे, अभी मैंने इसलिए प्रकट हुआ हूँ ताकि आपके मेरे प्रति आसक्ति बनी रहे। तो ठीक है, उसके बाद भगवान नारद मुनि कह रहे हैं कि वो जीवन जब ब्रह्मा जी का कल्प अंत हो गया, तब मैं भगवान की इच्छा से जो है भगवान के शरीर से दोबारा प्रकट हुआ और फिर ये नारद का देह प्राप्त किया। और उसके बाद क्या हुआ, अंतर बहिश्च लोकांस्त्री पर्ये में असकंदिता व्रतः अनुग्रहान महाविष्णु और अविगाप गति ही क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में भूर्भुवः स्वः में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखेंगे द डिवोटी इज लाइक नारद गेट रियल इंडिपेंडेंस, दे कैन ट्रेवल, दे आर फ्री टू ट्रेवल एनीवेयर। आप किसी भी प्लैनेट के अंदर, किसी भी वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, किधर भी जाने के लिए नारद मुनि जो है उनको कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई एयरप्लेन नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट स्टैंप नहीं कराना, कुछ नहीं है ना। और पता लिख रहे हैं कि वैसे वीणा के ऊपर जो है भगवान का नाम जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं और नए नए भक्तों को बनाते हैं, अलग अलग भक्त बनाते हैं नारद मुनि। एक दासी पुत्र, आप सोचिए, नो क्वालिफिकेशन, सिर्फ 4 महीने उन भक्ति वेदांत का संघ, क्या हुआ उसके अंदर, उन्होंने उनकी सेवा की, उनको आपस में कृष्ण कथा चर्चा करते हुए देखा सुना, तस्य मन भक्तस्य पृष्ठस्य हतई न सह, कि वो उनको ऐसा देख करके उनसे आसक्ति उत्पन्न हो गया। और एक बार उनका जब महाप्रसाद खाया, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित हो द्विजय सत्युच्च भुंजान तदपास्तकिन विषम, मेरे समस्त पाप रहित समाप्त हो गए और तब मेरे को मुनियों के प्रति आकर्षण जागृत हुआ और भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के लिए रुचि जागृत हुई। तत्रान महम कृष्ण कथा प्रगायतम अनुग्रहेणा शणवम मनोहर, कि भगवान के सुंदर दिव्य कथाओं को सुनने के अंदर भी रुचि जागृत हो गई। सुशुषय श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निशेवनात, उन साधुओं की संगत की सेवा करने से उनकी कृपा से भगवान कृष्ण की सेवा करने जागृत जो है रुचि प्राप्त हो गई। और उसके बाद मैं देख पाया कि भगवान कृष्ण मेरे वास्तविक स्वामी हैं। सोचिए उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, और वहां से अगले जन्म के अंदर वो क्या बन गए, श्री नारद मुनि, है ना। सिर्फ और सिर्फ, और इसके अंदर एक जो 16 श्लोक मैंने लिया था उसमें ये था कि जिसके ऊपर गोपाल कृष्ण ने कई बार लेक्चर भी दिया, एम्फसाइज करते हैं, कई बार उदाहरण भी देते हैं महाराज अपने लेक्चर के अंदर, कि नारद मुनि ने बिल्कुल वैसे ही विधि का पालन किया जैसा उन्होंने उन संतों से सुना था, एज इट इज उसी प्रकार से उस विधि का पालन किया। तो ये देवहूति नारद मुनि महाराज प्रताप रुद्र और अन्य ऐसे बहुत उदाहरण है श्रीमद् भागवतम के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जहां पे हम देखते हैं आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने से हमें, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कृष्ण का सिस्टम है, बिकॉज कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। कृष्ण चाहते हैं कि हम सब उनसे और केवल उनसे प्रेम करें, तो इसीलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि मेरे प्रतिनिधियों को खुश करो, मैं स्वाभाविक रूप से आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा और वो आपको प्यूरिफाई करेंगे, थॉरली प्रशिक्षित करेंगे कैसे मेरे प्रति शरणागत रहा जा सके, अहतु की कृपा प्राप्त की जा सके। तो ये जो सिस्टम ऐसे डिक्टेटरशिप का नहीं है कि गुरु रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं, वो बहुत कृपालु होते हैं जो भक्त हैं भगवान के आध्यात्मिक गुरु, लेकिन शिष्य को भी अपने और उनकी कृपा से निश्चित रूप से कृष्ण प्राप्त होंगे। वो तो कृष्ण बांटने के लिए ही सबको, उनका काम ही यही है बेसिकली, कि कैसे और भक्त बनाया जाए, उनको कृष्ण कॉन्शियस दी जाए। तो वी शुड नॉट थिंक कि मेरे लिए होप नहीं है, और बेनिफिट क्या है, केवल उनको प्रसन्न किसी ने कर लिया तो बस दैट्स इट। अब उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान की जो टीचिंग है वही गुरु देते हैं, गुरु क्या करते हैं केवल भगवान की टीचिंग को दोहराते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सारे लेक्चर में कहते हैं भगवान की टीचिंग क्या है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजे माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रति जाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते मेरी शरण में आओ, गुरु क्या बोलते हैं, भगवान की शरण में जाओ, है कि नहीं। और कैसे शरणागत हो गए, ये 4 चीज करो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे प्रणाम करो, बस सिंपल यही गुरु भी आदेश देंगे। लेकिन गुरु के आदेश का पालन करने से क्या होगा, भगवान देखते हैं अच्छा मेरे प्रामाणिक भक्त से आपको आदेश प्राप्त हुआ, उसका आप पालन कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब कैसे की जाए ये सेवा, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु के आजू बाजू घूमते रहो, सेंटिमेंटली फोटो खिंचाते रहो, देखो गुरु कितना खुश हो रहा है, तो लगता है कि गुरु प्रसन्नतम होते हैं जब उनसे फोटो खिंचाओ, देखो गुरु कितना प्रेम करता है हमारे साथ, या फिर समटाइम सेंटिमेंटल आइडिया दे, गुरु के आसपास घूमो या गुरु की केवल फिजिकल सेवा करने से कृपा प्राप्त होती है, ऐसा वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि उनके आसपास रहने से निश्चित रूप से हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा, उन्नत आत्माओं के साथ रहते हैं तो हमें भी कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा उच्च स्तर भी नहीं है। अच्छा स्तर ये है कि उनके मुख से श्रवण किया जाए और उनके दिए गए आदेशों का पालन करने का प्रयास किया जाए। पालन करना तो बड़ा मुश्किल आसान काम नहीं है, उसमें तो बहुत टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए सिंसियर प्रयास किया जाए। और सिंसियर प्रयास कैसा, तो मैं दो तीन क्वालिटी ये आपको देवहूति माता के इसमें आती है कि कैसे उन्होंने सेवा की। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च वो विस्तृज्य काम दम्भम च द्वेषम लोगम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इन अ वेरी फ्रेंडली डिस्पोजिशन, आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये नहीं कि उनको देखे कोई दूर भाग जाए या बहुत पास आ जाए, नो, विश्रम भेण आत्म गौरव भेण, वो एकदम बड़े भाई के समान इंटीमेसी के साथ जो है गुरु की सेवा की जाए। गुरु सुदृढ़ सौहृदा, क्या आध्यात्मिक गुरु हमारे टॉप मोस्ट वेलविशर हैं, और दूसरा अत्यंत आदर के साथ। विश्रम भेण कोई आत्मीयता हो सकती है तो इंटीमेसी में कोई फेमिलियर हो सकता है, बट नो, बहुत ही आदर के साथ और आत्म शौचेन इंद्रियों और मन को वश में रखते हुए और गौरवेण दमेन च सम्मान से आदर से इंद्रियों को वश में करते हुए क्या करना चाहिए, शुश्रूषया सेवा करना चाहिए। और कैसे सेवा होनी चाहिए, सौहृदेन प्रेम से, ग्रजिंगली नहीं, अरे कोई मिला नहीं तो मेरे को दे दी क्या करें, महाराज ने जिम्मेदारी दिया है निभाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नहीं। द कॉन्शियस शुड बी कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, ये आभार प्रकट करना चाहिए। क्योंकि यदि हमें लगेगा सेवा एक बोझ है तो हम गुरु पे एहसान नहीं कर रहे, कृष्ण की सेवा में लगा के गुरु हम पे एहसान कर रहे हैं। क्यों, तोमार सेवा ते जय तो दुख सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख, कि सेवा में आने वाले दुख और सुख को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इंजॉय नहीं करना चाहिए, सेवा में आने वाले दुख भक्त ठाकुर कह रहे हैं परम संपद है, क्यों, क्योंकि अविद्या के दुख को नाश कर देते हैं। तो ऐसे सेवा करके हम गुरु के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरु हमको सेवा में लगा के कृपा कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रेम से वो सेवा करनी चाहिए। और वाचा मधुर या वो, और वाणी में मधुरता रहना चाहिए, इस प्रकार से बोले मधुर वचनों से पति की सेवा की, ये नहीं कह रहे गुरु जी कहाँ फंसा दिया आपने, इतना मुश्किल टफ प्रोजेक्ट दे दिया, ये सेवा में लगा दिया, नो, उन्होंने नेचुरली उन पर क्रोध निकल आ सकता है, लेकिन नहीं, मधुर वाणी के साथ। और उसके बाद इतना ही नहीं, विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोघम अघम मदम अप्रमतोद्यता नित्यम तेजीयां समतोषयत। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ, कई बार सुनते हैं ना डिसाइपल शुड बी फूल नंबर वन, लाइक दैट, मूर्ख होना चाहिए, ही शुड, अपने को समझना चाहिए कि मूर्ख नंबर एक हूं, लेकिन मूर्खता को कारण नहीं करना चाहिए। गुरु ने बोला पानी लेके आओ, दूध लेके आता है कि नहीं, वो बोला आचमन कप लेके आओ तो बिस्लेरी का बॉटल लेके आता है। एक बार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, बोला यज्ञ के लिए फल लेके आओ तो फ्रूट सैलेड लेके आ गए। तो ऐसे गुरु को ना बेवकूफ होना चाहिए ना बुद्धिमानी, ओवर इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको समझना चाहिए गुरु को जो आगे फॉलो करना चाहिए। देवहूति माना बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ, क्या ढीला नहीं, ढीले ढीले बिल्कुल जो है कछुए की तरह चलते हुए, तत्परता, शुड बी वेरी दक्ष कॉम्पिटेंट के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम दंभ द्वेष लोभ तथा पाप और मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। ये नहीं कि मुझे उनसे क्या चाहिए, ईश्वर देश ने मैं क्यों सेवा करूं, या मेरे भी जब चेले होंगे तो मेरी सेवा करेंगे, वैसा नहीं, या द्वेष लोभ उनसे कुछ प्राप्त होगा, या मद, देखो मैं टॉप मोस्ट जो है, मैं सबसे बड़ा सेवक हूं गुरु जी का, सबको त्याग करके अपने शक्तिशाली प्रसन्न को सेवा कर लिया। तात्पर्य पहले पढ़ता हूं, सिर्फ यहां पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं, है ना। तो आफी प्रबोधन देते हैं गांधारी का, किस प्रकार पति अंधे थे तो अपने पति से एक नम्र पोजीशन ले लिया, अपने आंख पे पट्टी बांध लिया, इस प्रकार से विश्रम भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च, इस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नारद मुनि बता रहे हैं मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी, कि मैं जो हूँ ज्यादा नहीं बोलता था, श्रद्धालु था, और फ्रिवलस स्पोर्ट्स में मेरी रुचि नहीं थी, और जो है इंद्रियां कंट्रोल थी, और मैं चपल नहीं था, चपल अर्थात मतलब फ्रिवलस नहीं था और इंद्रियों पे कंट्रोल था। इस प्रकार से नारद मुनि कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर कुछ क्वालिटी थे। इन प्रकार की क्वालिटी को जो शास्त्र में जगह जगह ये शिष्य को कैसा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, मनन करना चाहिए। और आदर्श उदाहरण तो हमने दो लिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों के अंदर। और सबसे व्यक्तिगत उदाहरण तो श्रील प्रभुपाद, सिर्फ 5-6 बार अपने गुरु से, प्रभुपाद 4-5 बार मिला, लेकिन प्रभुपाद जीवन पर्यंत बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु से कभी भी, आई वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर। कोई भी तकलीफ हो, प्रभुपाद वॉज ऑलवेज रेडी टू लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ। हम देखते हैं प्रभुपाद खूब ट्रांसलेशन कर रहे थे, क्योंकि भक्ता ठाकुर का आज्ञा था, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और विशेषकर ये महीना तो आध्यात्म गुरु परंपरा को प्रसन्न करने का विशेष मैराथन है, जिसके अंदर असीमित कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान के संदेश को असीमित लोगों के पास पहुंचा करके। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, ताकि इस सेवा को हम करके और आध्यात्मिक गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त कर सकें। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कंठाश्रम भागवतम की जय। हरे कृष्ण। समझ आता हूँ, 5 मिनट ऊपर ले लिए मैंने।